बताने के लिए कृष्ण परतत्व है, इसलिए कह रहे हैं कि अक्मनतां फलमिदं न परम दुदाम, इन आंखों का फल एकमात्र हम जानते हैं और कोई फल है हम नहीं जानती। जितने आंख वाले व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनके आंखों का एकमात्र फल है, क्या फल है? जब कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ में, बलदेव भैया के साथ में, लाखों करोड़ों गायों को लेकर के एक से एक सुंदर हरे भरे वृंदावन में, जहां पर गिरिराज हैं, जहां पर जमुना है, जहां मानसी गंगा है, जहां मानस सरोवर है, अद्भुत अद्भुत भांडीर वन है, आप लोग जब जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो वृंदावन में जाते हैं, एक मंदिर देखा, अब आजकल तो शहर हो गया, वृंदावन की झांकी वहां नहीं मिलेगी। कुछ कुछ झांकी आपको सेवा कुंज में मिल सकती है, निधुवन में कुछ मिल सकता है, पूरी झांकी नहीं मिलेगी। नहीं समझे ये वृंदावन क्या था? अभी भी झांकी में जाइए, नंदगांव में जाइए, बरसाना में जाइए, बिहार वन में जाइए, अभी लाखों एक साथ में मयूर एक साथ में के का करेंगे, एक साथ में लाखों कोयल कुहू कुहू कर रही है। सचमुच में अभी वृंदावन में वहां पर बेली चमेली के फूल अपने आप स्वाभाविक ढंग से ये सब करते हैं, भ्रमर झंकार करते हैं। अभी भी वृंदावन में कुछ अभी दृश्य भी है, अभी पूरा अभी दूर नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं आंखों का फल हम यही जानती हैं, आंख न वाले जितने नेत्र वाले प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनका फल एक यही है। जब कृष्ण गोचारण में जा रहे हूं एक वन से दूसरे वन में, उस समय में वक्त्रं व्रजे सुतयो अनुदेनुजुष्टं जैवामिति तम अनुराक्त कटाक्ष मोक्षम। जब कृष्ण जा रहे हूं वक्त्रं व्रजे सुतयो अनुदेनुजुष्टं, वक्त्रं माने मुख कमल, अनुबेनुजुष्टम जो दो भैया जा रहे हैं ब्रजेश तनय, एक ब्रजेश तनय कौन? नंद बाबा ब्रजेश हैं, ब्रज के प्रभु हैं, इनकी तो 9 लाख है गाय बतलाई ना, और दूसरे ब्रजेश उनसे भी बड़े वाले हैं लंबे चौड़े, वो कौन है वैभव वाले? विश्वभानु महाराज, जिनकी कन्या श्रीमती राधिका जी हैं, वो भी ब्रजेश हैं। दूसरी बात यहां पर पहले कह रहे हैं ब्रजेश तनय, ब्रजेश माने नंद बाबा के पुत्र दो हैं, एक राम और एक कृष्ण, बलदेव और कृष्ण। कौन जैसे भाई? बलदेव तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, कृष्ण को मान लिया जाए जो जन्म से ही वहां पर रख दिए गए, इसलिए यशोदा जी और नंद बाबा ने उन्हें पाला पोसा, तो वो कृष्ण के पुत्र हो सकते हैं। भाई ऐसा मत सोचो, थोड़ी से हम विचार करेंगे एक मिनट, कृष्ण नंद बाबा जो यशोदा मैया के पुत्र हैं ना, वसुदेव और देवकी के हैं। भागवत में लिखा जैसे जब देवकी के गर्भ हुआ 8 महीने का, तो कंस के कारागार में वो प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, ये बात ठीक है। किंतु भागवत में कहा गया अदृश्यत अनुजा विष्णु, अर्थात जब कंस, जब ये वसुदेव जी कृष्ण को रख आए गोकुल में, नंद बाबा के घर में यशोदा जी के पलंग पर उनकी एक लड़की को उठा करके ले आए, वही थी जोगमाया, और कंस ने उसको मारना चाहा, जो ही पैर को उठा करके मारना चाहा उसी समय में वो हाथ से निकल गई और अस्त भुजा दुर्गा का रूप धारण किया और बोली रे कंस तू मुझे मार करके क्या करेगा, तेरा मारने वाला हंता तो दूसरी जगह में प्रकट हो गया। अरे ये लड़की तब वो ये कहां से आई, ये तो मेरी इष्ट देवी है, ये दुर्गा है, हमारी गृह देवता है, कुल देवता है, ये झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा तो दूसरी जगह प्रकट हो गया अदृश्यत, तो उस समय में सुखदेव गोस्वामी ने कहा अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनुजा, अनुजा माने कहते हैं पीछे से जो जन्म जिसका हुआ, यहां पर मथुरा में तो पीछे से एक साथ में किसी लड़की का तो जन्म नहीं हुआ देवकी के गर्भ से, तो ये अनुजा जो वहां से आई यशोदा जी के घर से, ये अनुजा कृष्ण की है, इसे ये निकलता है ध्वनि क्या कि कृष्ण का पहले जन्म हुआ, उनकी अनुजा वहां पर ये हुई है दुर्गा जी,
योग माया जी। इसलिए पहले कृष्ण हुए, जिस समय में यहां पर इनके चतुर्भुज कृष्ण पैदा हुए उस समय छोटे बच्चे के रूप में, दुबज रूप में, नंगे नाड़ी समेत जसोदा जी के गर्भ से ये पैदा हुए, इनकी जन्म लीला है। इसलिए अनुजा किसकी, एक कृष्ण की अनुजा है, नहीं तो भागवत झूठा हो जाएगा, शास्त्र झूठा हो जाएगा। दूसरी बात एक ये, उन्होंने ये लिखा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज अतत अपने आत्मा से जो पैदा होता है उसको कहते हैं आत्मज। नंद बाबा जी के लिए ऐसा क्यों कहा, वसुदेव जी ने ऐसा ना कहा, वहां पर तो जैसे प्रकट हो गए, भय प्रकट दयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, चतुर्भुज मूर्ति धारण करके वहां पर खड़े हो गए, जन्म तो वहां पर हुआ नहीं, इसलिए वो विष्णु के रूप में वहां पर उस गृह में कंस के कारागार में वो प्रकट हो गए, वहां पर जन्म नहीं हुआ। 16 कलाओं से परिपूर्ण रूप से जन्म कहां हुआ है, गोकुल में जन्म हुआ। इसलिए यहां पर बधाइयां बाजी, क्या बधाइयां बाजी, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, है ना। और क्या दिया उन्होंने, लुटाया क्या, हाथी दीनी, घोड़ा दीनी, और दिया पालकी। ये तो नंद में हुआ, बधाई बजी, सब लोगों को भरपूर सब कुछ दिया, वहां पर नाड़ी नहीं कटी, यहां पर नाड़ी कटी गोकुल में। यदि पुत्र ही नहीं पैदा हुआ तो नाड़ी कैसे कटती, जात संस्कार कैसे होता। और वहां पर जो रहने वाली पत्नी, जो गोप की बदमें थी और जो महिलाएं, उन्होंने देखा कि हमारे समय में ये पैदा हुआ, हम अपनी आंखों को कैसा विश्वास करें। लोग कहते हैं कि मथुरा में जन्मा, ये बात ठीक नहीं। इसलिए आंशिक रूप में विष्णु के रूप में उनका आविर्भाव हुआ और यशोदा जी के घर में गोकुल में बधाई जो बजी, ये सच रूप में वहीं पर उनका जन्म हुआ। मान लिया हमने, एक युक्ति लीजिए, मान लिया हमने कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी के गर्भ से हुआ, ठीक है, अच्छा। उन्होंने उस लड़के को लेकर के गोकुल में गए, अदला बदली की, आगे युक्ति हम कह रहे हैं, बात फैक्ट नहीं है, तभी मैं मान लिया कहता हूं। वहां पर जाकर के लड़के को रख दिया और लड़की ले आए, लड़की तो गायब हो गई, उड़ गई दुर्गा जी के रूप में। अब ये दावा कर सकते हैं कि हमारा पुत्र, ये नहीं कर सकते, क्यों, उनकी दी हुई लड़की को ले आए और लड़के को ले आए, तब तो वो कानूनन कह सकते हैं जहां ये हमारा लड़का है, हमने 1,000 रुपए में गाय खरीदी 10,000 रुपए में। इसके बाद में गाय वाले ने कहा कि भाई हम नहीं बेचते, रुपया लौटा दो, तुम्हारी गाय तुम ले जाओ। ऐसे ही यदि वसुदेव जी कहते हैं कि ये मेरा लड़का है, तो उनका कहने का ये अधिकार नहीं है, पहले लड़की को दे आए, लड़की को कभी दे सकते हैं, दिया तो फिर ऐसे क्यों कहेंगे। इसलिए केस यदि कोर्ट, हाई कोर्ट में और प्रिवी काउंसिल में भी, वहां पर भी पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो वहां से वसुदेव जी हार जाएंगे और कहेंगे कोई आई विटनेस है, वहां पर मथुरा में कोई आई विटनेस था जो कहे कि हाँ हमारे सामने, दोनों को छोड़ करके जो केस दायर करते हैं उनको छोड़ करके कोई है वहां पर साक्षी, कोई नहीं। और यहां पर वो ब्राह्मण साक्षी हैं, वो महिलाएं साक्षी हैं, सभी साक्षी हैं वहां पर, इसलिए वो कृष्ण सचमुच में यशोदा के ही पुत्र हैं। अब यहां पर कह रहे हैं, अच्छा मान लिया कि हमने कृष्ण को तो उनका पुत्र माना, किंतु बलदेव को कैसे पुत्र कह रहे हैं। बलदेव जी ने जब नंद बाबा जब मथुरा में गए थे कृष्ण को बलदेव को लेकर के, अक्रूर जब ले गया तो कंस के मारने के बाद में कृष्ण और बलदेव जी को उन लोगों ने बतलाया कि तुम तो वसुदेव जी के पुत्र हो, तुम अब गोकुल नहीं जाना। कृष्ण का जारी, हमने जीवन भर तो यही सुना कि मैं यशोदा मैया मेरी है और पिता हमारे नंद है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं, बड़े दुखी हो गए, जाने नहीं दिया, ये लेकर के नंद बाबा चला जाएगा गोकुल में, इसलिए जाने नहीं दिया। दूसरे दिन शाम को कृष्ण और बलदेव शाम के समय उनके पास आए, वो लोग रोने लगे कृष्ण और बलदेव, नंद बाबा उनको देख करके अपने एक अपने जंघे पर बलदेव जी को दाहिने तरफ और कृष्ण को बाएं तरफ बैठा दिया और दोनों को गले से ऐसे लपट करके आंखों से आंसुओं से तर कर दिया दोनों के। बाबा ने, कृष्ण ने अपने पिताम्बर से कृष्ण का अश्रुमोचन किया, बाबा ऐसा तुम क्यों रो रहे हो, अतः तुम लोग यहां पर रह जाएगा क्या, हमको छोड़कर हमारे साथ में नहीं चलेगा। बलदेव जी बोले, पिताजी आप ही हमारे पिता हैं,
लोग कहते हैं कि वसुदेव जी, वसुदेव जी ने हमको तो फेंक दिया, पालन पोषण तो किया नहीं। जो पालन पोषण करने वाला वो यथात्मने पिता होता है। इसी ग्राउंड पर हम कर्ण को देखते हैं, उनका कुंती का पुत्र था, किंतु उन्होंने प्रत्याग कर दिया। उन्होंने कहा जी मैया, अब तू मेरी मैया है, मैं जानता हूं, किंतु मैं दुर्योधन के पास, उसने हमारा पालन पोषण किया। इसी तरह से यहां बलदेव जी कहते हैं पिता बहुत प्रकार के होते हैं। एक पिता वो जो जन्म देता, दूसरा पालन पोषण करता है अन्नदाता, और तीसरा होता है जो अपनी कन्या का विवाह देता है। ससुर भी पिता है और राजा भी पिता है, ऐसे पिता बहुत प्रकार के होते हैं। इसलिए मैंने आपके अतिरिक्त और खुशी को पिता नहीं समझा, आप ही ने हमारा पालन पोषण किया, इन्होंने तो हमको फेंक दिया था, छोड़ दिया डर के मारे, इसलिए आप ही हमारे पिता। इसलिए यहां पर ब्रजेश तनया, एक बलदेव जी और दूसरे हो गए कृष्ण। ये जब जा रहे हैं बंसी बजाते हुए गायों को लेकर के एक बन से बन दूसरे बन में, उस समय में अनुदेव जुस्तम, आगे कौन जा रहा है? बलदेव, और पीछे अनु, पीछे कौन जा रहा है? कृष्ण जा रहे हैं। यहां पर गोपियां अपने प्रेम के भाव को, कृष्ण के प्रति ऐकांतिक प्रेम है, उसको जरा छिपाना चाहती हैं। इसको रस शास्त्र में अहिथा कहा गया, छिपाना चाहती, लोग न समझे कि कृष्ण के प्रति अनुरक्त अधिक है, क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव ही होता है छिपा करके रखना। और उसको जब कहो प्रेम है आपसे, मुझे बहुत प्रेम है, प्रेम दूर हो जाएगा, नहीं प्रेम रहेगा, प्रेम को छिपा करके रखना चाहिए। इसलिए गोपियां छिपा करके कह रही हैं, जो लोग समझे कि बलदेव और कृष्ण को बराबरी के रूप में, ऐसा कह रही हैं। इसलिए कहते हैं ब्रजेश तनय, दूसरा अर्थ एक और, बलदेव जी बड़े रसिक हैं, बड़े भावुक हैं, उन्होंने देखा जी अब हमको आगे बढ़ना है, अब गोपियां इनके तरफ में देख रही हैं, हम वन को जा रहे हैं, इसलिए अपनी श्रृंगा लेकर के आगे बढ़ गए। इसलिए यदि हम रहेंगे तो हम बड़े भैया हैं, जेठ हैं, रस में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए समझ बुझ करके आगे बढ़ गए। और पीछे रह गए कृष्ण अनु, जिनके होठों पर मधुर मरली बुझा रही है, उनके कटाक्ष से जो निकल रहे हैं गोपियों के प्रति जो कटाक्ष, उसको जिसने पान किया, जिसने इन आंखों से देखा, उन्हीं की आंखें की सार्थकता है, उसको देखकर उसी की आंखें सार्थक है, अन्यथा आंखों पर वज्र पड़ जाए और हम अंधे हो जाए, नहीं तो देखेंगे किसको। इसलिए ऐसे कृष्ण को दर्शन करना, व्यास जी या सुखदेव गोस्वामी इतने से ही नहीं चुप हो जाते, वो और इसका अर्थ एक लगाते, वो अर्थ क्या, बहुत गूढ़ रहस्य, ब्रजेश तनय इसका अर्थ कहते हैं। ब्रजेश तने कृष्ण है नंद बाबा के, और एक ब्रजेश है विश्वभानु बाबा, उनकी है लड़का लड़की सूता, और कृष्ण के नंद बाबा के सूत, सूतश्च यहां पर सूतया, ये संस्कृत के नियम ऐसे होते हैं। सूता माने राजा जी, विश्वभानु महाराज की लड़की विश्वभानंदिनी, और यहां पर सूत कौन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। जब दोनों, जब बलदेव जी आगे निकल गए, सखा लोग आगे निकल गए, इन दोनों में मिलन हुआ, और उस समय अनुबेनुजुस्तम, पहले कृष्ण जो मधुर मुरली बजा रहे थे, राधा जी ने वो मुरली छीन ली और लेकर के अपने होठों पर लगाई मुरली को, और कृष्ण उसको अपनी अंगुलियों से उसका स्वर सारे गमा पदानी मूर्छना अवरोह और आरोह के साथ में सबको उसको निकाल रहे हैं, चार जगत को मुग्ध कर रहे हैं, ये अनुबेनी जुष्टम का। उस समय में कृष्ण अपनी ललसाई हुई दृष्टि से श्रीमती राधिका जी को देख रहे हैं, और राधिका जी अपने आंखों से उसको अर्चन कर रही हैं, कैसे, फुलिंदी वर कांत मिंदु वदनम बरहावतन संप्रियम श्री वत्सांकम उदार पाणी कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनांगलार्चित तनम गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगम भूषाभजे। फुलंदी वरकांत बिंद, उसमें बतलाया, गोपियां बहुत दूर से कुंजों से कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, कभी अटारियों से, कभी घर के झरोखों से, अपनी आंखों से कृष्ण का अर्चन करती हैं, आरती उतारती हैं,
और कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से ही उनको कृतकृत्य कर देते हैं। इस दृश्य को जिन्होंने नहीं देखा, कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर मधुर वेणु, और यहीं पर उनका लीला परिकर राधा इत्यादि जी को एक साथ में चारों चीजें, लीला माधुरी, रूप माधुरी, बेन माधुरी और गुण माधुरी एक साथ में देखा। ये किसी भी भगवत तत्व में ये नहीं है, जो कृष्ण में यह है। इस दृश्य को जो नहीं देखा, उनके आंखों पर न रहना ही ठीक है, वज्र से वो भीग जाए, अंधा हो जाए, अनेक तो दृश्य देखेंगे तो यही दृश्य देंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, यदि रूप है तो कृष्ण का, यदि भक्ति करना है तो कृष्ण के प्रति। इसलिए सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रोखे अहे तुक्य अब्दविता जब भक्ति। इसीलिए कह रहे हैं परम धर्म क्या है, परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं वसुदेव गोस्वामी से। इसलिए कह रहे हैं परम धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का यह परम धर्म है, अवांग मनसोती की जो प्रभु है, अधोक्षज प्रभु, अधोक्षज किसको कहते हैं, अधकृतम अतिक्रांतम ज्ञानम अक्षजम जेन सत, जिसमें प्राकृत इंद्रियों का ज्ञान निरस्त हो जाता है, इसे भगवान को नहीं जाना जा सकता है। यह बहुत नीचे की बात है, वाणी उसको व्यक्त नहीं कर सकती, मन उसको पकड़ नहीं सकता, अतिंद्रिय पुरुष है वो है कृष्ण। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देख करके भी उनको नहीं देख सके, शंकर नहीं देख सके, इंद्र ने सोचा ये गोप का लड़का मूर्ख जाहिल, पढ़ा नहीं स्कूल में, और ये हमारी पूजा बंद करके और गोवर्धन एक पत्थर की पूजा करा रहा है। कहे अच्छा मैं मूर्ख हो गया, तुम बड़े बुद्धिमान हो, अच्छा तो देखो क्या किया। जब पूजा हो गई तो इंद्र ने बारी बर्षण मूसलाधार वर्षा की और वज्र चलाए, कृष्ण ने अपनी कांगी उंगली पर उठा लिया। कांगी उंगली पर कैसे उठाया, क्यों उठाया कांगी उंगली, हाथ पर उठा लेते नहीं। राधा जी बाएं तरफ में कृष्ण की है, शक्ति शक्तिमान है ना, अभिन्न है, शक्ति उनसे अलग नहीं, इसलिए बाएं तरफ में कृष्ण की राधा जी, और उसके बाम बाम में समस्त नए अंग में यह उंगली राधा जी ने कांगी उंगली पर गोवर्धन को उठा ली। देखो यदि गिरा तो मैं आंखों से चकना चूर कर दूंगी, इसलिए कृष्ण ने उठाया अपनी शक्ति के बल पर। यदि कृष्ण निराकारणीय शक्ति, निरंजन, अव्यक्त, अनादि होते, निर्गुण होते तो कैसे उठा लेते, उनमें तो दया भी नहीं है, शक्ति नहीं है, क्या करेंगे, इनकी उपासना करके क्या होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे निराकार अव्यक्त अव्यक्त और निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए भी कहा। एक चीज और भी समझना चाहिए, निर्गुण और सगुण दोनों एक बात है, जब वो दिखते हैं तो उसी को सगुण कहते हैं, जब नहीं कृष्ण दिखते हैं तो उसी को निराकार कहते हैं। भाई अलग अलग चीज नहीं है, उसी को सगुण और निर्गुण भी कहते हैं। निर्गुण किस लिए, जगत के जितने प्राकृत रजोगुण हैं, तामसिक गुण है, सत्वगुण है, इनसे अतीत होने के कारण अखिल कल्याणकारी चिन्मय गुणों के, सच्चिदानंद गुणों के एकमात्र आधार है ये कृष्ण, इसमें उनमें सद्गुण है। निर्गुण किस लिए कहा, अरे एक पानी है, पानी का कौन सा रूप है, टैंकी जो कहते हैं वाटर हैज नो से, वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर हैज नो कॉलर, क्यों कहते हैं, पानी का कॉलर नहीं है, पानी का टेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट डिफाइन इट, आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए अवांग मन से गोचर होने से आप व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए निराकार कर दिया थार करके। किंतु कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद रूप है, उनका जन्म मरण नहीं है, जन्म की लीला करते हैं अद्भुत, उनका क्रिया काम में दिव्यम दिव्यम जन्म कर चौ में नित्यम, जो व्यक्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नहीं तीसो भावे, कृष्ण का जन्म और कर्म जो है अलौकिक है, इसको साधारण मत समझो। हम लोग कर्म में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं का श्रवण करने से हम भाव हम हमारा दूर हो जाएगा, फिर माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जन्म मरण से अतीत हो जाएंगे। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करो, यही नारद जी ने उनको कहा, और उसी को उन्होंने श्रीमद् भागवत में प्रकाश किया, जिसका श्रवण करने से निश्चित रूप में ने? कथा और नाम और भगवान अलग अलग नहीं है, कृष्ण अपने कथाओं को सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करके उसके सारे मल और अज्ञान को दूर करके स्वयं वहां पर बैठ जाते हैं, यह उनकी बड़ी करुणा है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में कृष्ण की लीलाओं को, भागवत की लीलाओं का हम लोग श्रवण कीर्तन और चिंतन करेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। आज यही करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल हम राग पंच अध्याय का एक श्लोक या दो श्लोक हम लोग प्रणाम करेंगे। आप लोग समय पर आएंगे, हम जहां तक हो सकता प्रवेशन, वैसे तो मैं बहुत क्षुद्र हूं, तो अभी वृंदावन की जो फुलझड़ी हमारे पास में है उसको हम देने की चेष्टा करेंगे। एक महामंत्र आप लोग लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसको ठग बतला रहे हैं? मधुपुरी में एक ठग रहता है, उसने मद्यशाला खोल रखी है, मद्य का विराट दुकान उसकी है, होलसेल वहीं से मधु बिकता है, मधु माने मदिरा बिकता है, उसका मालिक मधुपति है, मधुपति माने कृष्ण मधुपति, और तू वहीं से उड़ करके आया है, जरूर तुमने मधुपान किया। स्वामी जी कैसे कह रही हैं, मैंने तो मधुपान नहीं किया, जरूर आया, उसका लक्षण तो है ना, क्या किसी को समझाने और संतना देने के लिए आना चाहिए तो वैसा देश बना करके आना चाहिए। तुमको होश नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, कैसे चरण छूना चाहिए, पवित्र होकर के आया, अरे अपने गुल्फों में क्या लगाया, गोफों में। तो मैंने स्वामी जी कुछ नहीं लगाया, अरे लगाया नहीं, मैं देखूं ये लाल जैसा रंग लगा हुआ है, ये क्यों, ये जानते हो, मैं बतलाऊं ये कहां से आया, हम लोगों की सौकोने के स्थल में उनके वस्तक्षल में जो कुमकुम था वो कृष्ण से मिली और वो माला मुरझा गई, किंतु उनका जो कुमकुम उसमें आया उसी पर तू बैठा, इसलिए ये तुम्हारे आ गए, और तुम फिर आता है हमारी उद्दीपना करने के लिए, तुम्हें देख करके हमें रोष और क्रोध आता, तू यहां से जल्दी से चला जा। जिसका दूत ही ऐसा है तो वो कैसे होंगे, जदुओं की सभा में जब उनको पकड़ेंगे, जैसे किससे ये प्रेम करता है उस समय ये जदु लोग उनसे प्रतिशोध लेंगे, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। अंत में बीच का एक श्लोक कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मृगेरू कपंद्रम दिव्यदे लुप्त धर्म स्त्री में कृत विरूता स्त्री जीत कामयानम बलिमपिम बलिमत्वा आवेश धन छवतज तदल अशत सौख्यम तत्कथा न। कहते हैं मृगेरू कपिंद्रम, स्वामी जी हमारे प्रभु की निंदा कितने करते हैं आप, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कौन सा ऐसा दोष किया, उन्होंने तो आपको छोड़ा नहीं, आपके प्रति बड़े अनुरक्त हैं, इसलिए उनसे संधि करना ही उचित मैं समझता हूं। उनसे संधि की लीजिए, उनसे मतभेद मत कीजिए, वो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। कहे तुम्हारे प्रभु का कुछ गुणगान करूं बतलाऊं। देखो उनकी बात छोड़ो, काले नाम के जितने हैं ऐसे ठग सब हैं, धूर्त होते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते, सबसे नकली प्रेम करते हैं। ये काला उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दू, ये पिछले द्वापर में एक काला हुआ, वो दशरथ जी का पुत्र बन करके आया। उसने कहा मैं बड़ा भारी त्यागी हूं, उसने सब कुछ छोड़ दिया, पिताजी को मैया को राज्य को सबको भाई को सब छोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा त्यागी जो अपने स्त्री को साथ में ले गया, उसको क्यों ले आया। अरे यदि साधु बनना है, त्यागी बनना है तो उसे भी छोड़, तो उसे तो छोड़ा नहीं, उसे साथ में ले आया। अच्छा खड़ाऊ पहनता था लकड़ी की, बड़ा त्यागी, जटाजूट बना लिया, अब धनुष की क्या जरूरत है, जब तुमने सब कुछ छोड़ा तो धनुष भी साथ में। यहां आकर के उसने एक बंदर को मारा, ये बंदर कौन, बाली। मृगेरू कपिंद्रम दिव्यदे लुब्ध धर्मा, अरे जिस बंदर का मनुष्य आदमी मांस नहीं खाता, जिसे बहलिया तक नहीं मारते, आज उस बंदर को किसने मारा, कौन जो सर्वत्यागी बना हुआ है, किसने मारा। कहता है स्त्री जीता, मैं स्त्री जीत हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बाली को मारा किस लिए, वो भी पेड़ के आड़ से मारा। मारने के बाद में बाली के पास में ही आए, कहे क्यों हमको मारा, अरे तुम एक कामी वो एक कामी, उसकी स्त्री हमारे पास में थी और तुम्हारी स्त्री को हरण करके कोई ले गया, मारा क्यों हमें। अरे तुम सीधा साधा हमारे पास में आता, कहता जी हमारी स्त्री खो गई है, कोई लेकर के गया, मैं रावण को पकड़ करके सीता जी के साथ में तुम्हारे यहां कर देता, वो हमारे कांख के अंदर में बरसों तक पड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो एक बार सूर्य की पूजा कर रहे थे बाली जी, और वो रावण युद्ध करने के आ रहा, युद्धम देही युद्धम देही, उसने ऐसे पकड़ लिया जैसे मच्छर पकड़ते हैं यहां पर बंद करके, और वो सूर्य को जल देता रहा। थोड़ी देर के बाद में कुछ बहुत दिन रहा, इसके बाद में वो दांतों से काटने लगा, नखों से उनको नोचने लगा, वो भूल गए कि इसके अंदर में कुछ है। उन्होंने देखा जैसे कोई कीड़ा काट रहा है, तो ऐसे ऐसे किया तो उड़ करके भागा रावण। उस रावण को मैं कहता था पकड़ करके ले आता सीता जी को साथ में, कौन सी बड़ी भारी बात है, तुम इसके पास में गए। राम ने कहा जी देखो हमने इसे निकाली की है, हमने प्रतिज्ञा की हमारी स्त्री को खोज करके लागा और इस स्त्री को मैं लौटा दूंगा। तो बतलाओ को ये दोनों कामी, गोपी कह रही है देखो ये दोनों कामी स्त्री, और कहते हैं कि हम स्त्री जीत हैं। अरे सोचो देखो एक सुरपना खाई, अद्भुत राम का रूप देख करके मुग्ध हो गई। अरे क्यों नहीं, जब हिरणी तक मुग्ध हो जाती है, पशु पक्षी सभी मुग्ध हो जाते हैं, तो ये सुरपनखा नाम की क्या चीज है, वो तो मुग्ध हो गई। जिसको नहीं कहना चाहिए उस बात को उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मुझे भाग्या के रूप में मुझे ग्रहण कर लीजिए, मेरी जैसा सुंदर कृष्ण में कोई नहीं है, आपके जैसा सुंदर कोई विश्व में नहीं है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी बैठेगी। उन्होंने उसका नाक कान काट लिया। क्यों? अरे तुम कहते हो कि मैं सबकी कामना पूर्ण करता हूं, तो कामना तो पूर्ण करते हो, उसका नाक कान क्यों काटा? वही कह रही, ये काला है ना, इसलिए काटा। मैं तो इसे शादी करूंगा नहीं, और संसार में विश्व में कोई भी इसका कुरूप देख करके इसके साथ में शादी नहीं करें, इसलिए कान काट लिया। और ना बोला बताओ कैसा ठग कोई और हो जगत में होगा, ऐसा क्रूर कोई होगा? ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए कालों की बात करते। और सुनेगा भाव तो करे, तेरे प्रभु की ऐसी ये काले है, उनकी महिमा और कुछ बतलाऊं? इसलिए हमारी संधि उनसे नहीं हो सकती। एक काला और था, कहते हैं कि सतयुग में आया, उसने अपना नाम रखा बामन। वो भिक्षा मांगने के लिए गया, कोई कमी नहीं थी, फिर भी भिक्षा मांगने के लिए गया। और भिक्षा मांग करके क्या कहता है? कहता जी हमको तिल पर भूमि दो। उन्होंने कहा जी ले लो। जब लेने लगा तो कैसा किया? प्रभारी रूप एकदम, और तीन पग से सारी पृथ्वी, सारे भूमंडल, यहां तक कि सत्यलोक तक, पाताल लोक तक सभी ले लिया। तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं रही। एक से पृथ्वी, दूसरे से समस्त ब्रह्मांड, और तीसरे के लिए जगह में नहीं मिली। वो बेचारा क्या करता का, जो हम ही को माप लो, अपने को भी दे दिया और उसको बांध लिया, और बांध करके गिरा करके नाग पास से कस लिया। वो तो प्रहलाद महाराज, ये ब्रह्मा जी, अरे ये प्रभु ये क्या कर रहे, इसने सर्वस्व दे दिया और आप इसको बांध रहे हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। तो इस तरह से इनकी बात क्या कहें, ये तो कैसे हैं, ये काले वाले कौवे हैं, कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया, काला काला सब कर रहे हैं, कौवा का उपमा दिया, कृष्ण भी काले, ये कौवा भी काला। कौवा भी स्त्रियों के सिर से खाने वाली चीजों को लेकर के उनको ठुकराता है, ऐसे ही ये उसी जिसका खाते हैं उसी को ठुकराते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर चलते हैं। इस तरह से तरह तरह से भावनाएं करते हुए, कभी क्रोध से, कभी रोष से इन बातों को कह रही। आज समय अधिक हो गया आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। फिर हम कभी आएंगे 6 महीने के बाद में, उस समय में हम लोग चेष्टा करेंगे, उस समय मिलेंगे। तो उस समय में केवल इन्हीं 6, 7 या 10, 14 श्लोक हैं, इनके ऊपर में कुछ थोड़ी थोड़ी सी हम टीका और व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आप लोग इसके बाद में हरिनाम कीर्तन करते हुए हम लोग आज का ये समाप्त करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गौरवानंदे हरि बोल। ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणांतिके।
मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी कोटि कोटि आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात उपस्थित श्रोतृवृंद, मैं अपना यथा योग्य अभिवादन आप लोगों को अर्पित कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस बंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में सत्संग भवन बनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उस मूल संत जी को भी मैं अपनी आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पश्चात दिन व्यक्ति ने अपने धन का उपयोग कर ऐसा सुंदर सत्संग भवन बनाया जिसमें विश्व के लोग, साधु संत पुरुष लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करके लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा वृद्धि करने के लिए चेष्टा करते हैं। हमारा इन्होंने जो परिचय दिया, मैं बहुत ही दीनहीन, तृण से भी दीनहीन हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो वृंदावन में किसी प्रकार से लोगों में से माधुकरी लेकर जीवन निर्वाह कर किसी प्रकार से राधा कृष्ण के एकांतिक भजन करने की चेष्टा करता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हम लोग हैं जिन्होंने अपने कीर्तनों के माध्यम से विश्व में विश्व प्रेम को, कृष्ण प्रेम को, गोपी प्रेम को, ब्रज प्रेम को जगत में दिया। आज विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर लोग राम और कृष्ण को नहीं जानते, श्रीमद् भागवत और गीता का अनुनय नहीं सुनते। ये सब वही चैतन्य महाप्रभु जी की अपार करुणा है। उनकी एक दो दो भुजाएं विश्व में सर्वत्र जाकर के और गीता, वेद, पुराण, उपनिषद की प्रतिष्ठा की। मैक्स मुलर विद्वान पहले थे जो संस्कृत सीख करके भारतवर्ष में गए और वेदों का संस्कृत में इसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया, उसके बाद में और जगह अनुवाद हुए, किंतु उनका लक्ष्य हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और था। जब वेद उपनिषद केवल मैथोलॉजी है, भूल भ्रांतियां इसमें है, इस चीज को उनको दिखाना था, इसलिए उनकी परंपरा ठीक नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ ही दिनों में अपने परिकरों को पश्चात देशों में भेजा और उन्हें यथार्थ भारतीय संस्कृति क्या है, गीता का लक्ष्य क्या है, भागवत का लक्ष्य क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, आत्मा क्या है, इस चीज का अत्यंत सरल सहज शब्दों में कीर्तन के माध्यम से सबके प्रति हृदय में प्राण का स्पर्श और संचार किया। उन्होंने कुछ दिनों में ही उन्होंने विश्व में सर्वत्र अपने शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा कृष्ण नाम का सर्वत्र प्रचार किया और उन्होंने दिखलाया हरेर नाम ऐव, हरेर नाम ऐव, हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। भगवान नाम के कीर्तन के अतिरिक्त भगवान को सर्व सहज रूप में पाने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। इसलिए मैं अपने को भी भाग्यशाली समझता हूं कि उस परंपरा में हम लोग आए हैं। आज का विषय कुछ श्रीमद् भागवत का है। मैं भागवत में जो अपने गुरु वर्गों से कुछ सुना है उसका अनुशीलन किया है, मैं आप लोगों को सर्वसाहज में कुछ देने की चेष्टा करूंगा। एक समय की बात है, व्यास जी वेद अभ्यास ये अपने आश्रम में साम्याप्रस्थ एक आश्रम था। भगवती गंगा और जो सरस्वती जहां पर मिलती थी, बड़ा सुंदर निर्जन और बहुत ही रमणीय आश्रम था। वहां पर आश्रम में बैठे हुए थे। आज वो कुछ क्षुब्ध से हैं, चित्त अशांत है, कुछ मुख सूखा हुआ है, कुछ चिंता कर रहे हैं। इतने में जगत गुरु देवर्षि नारद वहां पर उपस्थित हुए। व्यास जी उठ करके आसन से उनके चरणों का अभिवादन किया, उन्हें अर्घ इत्यादि दे करके और वहीं पर बैठ गए। नारद जी ने कहा, कुशल है कोई त्रुटि तो नहीं है चित्त में? आपका चित्त कुछ क्षुब्ध दिखता है, कुछ मुख उदास है, क्यों? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैंने वेदों का चार विभाग किया, बहुत कठिन चीज है, तो भी मैंने लोगों के कल्याण के लिए उसका चार भागों में विभाग किया और अपने चार शिष्यों को इसकी शिक्षा दी। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को अपने शिष्यों को वैशंपायन, पैल, सुमंत और जैमिनी को दिया और पंचम जो वेद है भारत, उसको सुत गोस्वामी को, लोमहर्षण सूत को मैंने शिक्षा दी। इसके बाद मैंने देखा कि यह बहुत कठिन है, लोग इसको समझ नहीं सकते, तो मैंने स्त्रियों को भी और शुद्र तक भी जीव मात्र को कुछ शिक्षा देने के लिए मैंने महाभारत की रचना की और उसमें गीता जैसे रत्न को मैंने प्रकाश किया। इसके बाद हमने वेदांत दर्शन समस्त उपनिषदों का सार मैंने लिखा। इसके बाद में हमने 18 पुराण बनाए, 18 उप पुराण और शाखा पुराण हमने बनाए, जिसमें हमने सत्कर्म, धर्म इत्यादि की पूरी शिक्षा दी। मनुष्य क्या क्या धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है, पति का स्त्री के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, स्त्री का अपने पति के प्रति और पति का स्त्री के प्रति और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इत्यादि के प्रति हमारा क्या धर्म है, इसको भी उसमें लिखा। इस प्रकार से मैंने सब कुछ लिखकर और जगत में इसकी शिक्षा दी, तो भी आज मेरा मन आत्मा प्रसन्न नहीं है। तथापि नात्मा परिष्टुष्यते, मेरी आत्मा आज प्रसन्न नहीं है। क्यों, मैं नहीं समझता। रोगी अपना रोग नहीं जानता, रोगी तो डॉक्टर वैद्य के पास में जाता, वो नाड़ी पकड़ करके बतला देगा ये आपका क्या रोग है, रोगी को बोलना नहीं पड़ता। हमारे कलकत्ते में बीसी राय थे, बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर प्रथम, उनके पास में एक रोगी गया, उसका घर वाला उसको लेकर के गया, जे इसको जरा देखना है, इसको क्या हो गया है। उन्होंने कहा, जे तुम रोगी है या वो रोगी है जो ले गया था उसको? उन्होंने कहा, जे तुम रोगी है ना वो रोगी है? नहीं, वही रोगी है। उन्होंने कहा, नहीं तुम रोगी है, अभी तुम्हारा इलाज होना चाहिए। और देखते देखते उसका ब्रेन हेमरेज हो गया और वह झट गिर गया और वो मर गया। तो वैद्य लोग और डॉक्टर लोग इसको समझते हैं ये क्या रोग है, इसलिए आप कृपा करके आप ही हमारा रोग निर्णय कीजिए, मेरा मन अभी तक प्रशांत क्यों नहीं है, क्यों उदास है। उन्होंने कहा, आपने सब कुछ किया किंतु आपने भौतम अनुदितम प्राय भगवत जसा, आपने यह सब कुछ लिखा किंतु कुछ कंफ्यूजन लोगों में हो गया, संदेह कुछ लोगों को हो गया। भगवान ब्रह्म तो एक हैं, किंतु आपने ऐसा लिखा, कहीं लिखा जी गणेश जी सबके आराध्य है, कहीं आपने लिखा ब्रह्मा ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं ये जगत के आराध्य हैं, कहीं आपने शंकर जी को लिखा जे शंकर जी भगवान हैं सबके आराध्य हैं, कभी देवी को महिमा आपने पुराणों में लिखी, किंतु इसका सामंजस्य क्या है आपने अभी तक नहीं दिखाया। परतत्व एक है तो ये अनेक दिख रहे हैं क्यों, किसका भजन किया जाए नहीं भजन किया जाए, आपने ये ठीक से विचार करके सामंजस्य करके ये नहीं बतलाया। दूसरी बात, वेदों में लिखा गया मधु ब्रह्म माधुर्य एव ब्रह्म, मधु ये ब्रह्म है। मधु क्या, मधुमक्खी वाला मधु नहीं, प्रेम रूप मधु ये भगवत का स्वरूप है। आनंदम अयम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। यदि ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, भगवान की अनुभूति होगी, तो जयात्मा संप्रसीदति श्रीमद् भागवत में लिखा गया, सबई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अपतिहात्मा जयात्मा संप्रसीदति। भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करने पर निश्चित रूप में आत्मा प्रसन्न होगी, तो इसका मतलब हुआ आपने अहेत की भक्ति नहीं की इसलिए आपका चित्त खिन्न है, आप भगवान का अमल जस वर्णन करें। वह रस स्वरूप है, वह जो भगवान है परतत्व वह रस स्वरूप है। रसा ही वायं लब्ध्वा आनंदी भवती, जो ब्रह्म रस स्वरूप है, जो आनंदमय है, जो मधु स्वरूप है, वो आनंदमय भी है, वो रसिक भी है। केवल आनंद स्वरूप नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, वो आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया वो आनंदमय है। निरमकल्प तरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम इत्यादि में बतलाया गया, तो वो रस स्वरूप है और उसको जो प्राप्त करता है वो आनंद स्वरूप हो जाता है, रसमय वो भी हो जाता है। कृष्ण आनंद होते हुए भी रस स्वरूप होने पर भी रसिक भी हैं, इस आनंद का आस्वादन करके वो रस में डूब जाते हैं, इसलिए वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, रस की मूर्ति स्वरूप है। जो उनका अनुभव करता है वो रस में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है। आपने तो इसका वर्णन किया नहीं कुछ, इसका कुछ भी यदि आप देते आपकी ये अवस्था नहीं होती। आपने परम ब्रह्म की बात आपने कही नहीं, कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म है, वो रस स्वरूप है, वे आनंदमय हैं, वो मधु हैं, और उनको आस्वादन करके सभी लोग आनंद स्वरूप हो सकते हैं, आपने इसका विवरण नहीं दिया। आपने जिस धर्म की टीका की है, व्याख्या दी है, वेदों में उपनिषदों में पुराणों में आपने जो व्याख्या दी, महाभारत में जो व्याख्या दी धर्म की और सत्कर्म की और जगत के लोगों को सिखलाया, उसके संबंध में मेरा यह कहना है, नारद जी कहे निष्कर्ममपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। कहते हैं जो निष्कर्म अतत निष्काम जो कर्म है, इसकी तो बात ही क्या, या कर्म की जो अमल निरंजन ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, जो गीता में कहा गया, जो वेदांत में कहा गया, वेदों में कहा गया, इसी की ही शोभा नहीं है यदि भगवान के चरण कमलों का अनादर कोई करे तो। ऐसा निरंजन अमल ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान के आप करुणा की गाथा, उनकी लीलाओं का गाथा कुछ वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा, ओहो मैं तो ये सब जानता नहीं, मैं कैसे इसका वर्णन करूं। उन्होंने कहा यह बहुत सहज सरल तरीका है, ज्ञान के द्वारा उसे नहीं जान सकते, अवांग मन सो गोचर है, वैराग्य के द्वारा उनको नहीं कोई जान सकता। नयात्मा प्रवचने न लभ्य हो, प्रवचन के द्वारा, मेधा शक्ति के द्वारा नहीं होगा। इसीलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो भगवान का सबसे पहले अनकंडीशनल सरेंडर करें उनके चरणों में, और तब उसके हृदय में आकर के अपने को स्फूर्ति कर देंगे जो कैसा मैं हूं, कौन हूं। इसलिए आप भक्ति योग का अनुष्ठान करें, अपने चित्त को यह कहें मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हैं, यही भक्ति योग है। आप भक्ति योग का अनुष्ठान कीजिए। नारद जी का करके चले गए और ये अपने निर्जन आश्रम में, जहां पर भगवती गंगा कल कल बह रही थी, जिसमें पास ही में उपवन में बेली चमेली इत्यादि के फूल खिले हुए हैं, वहां पर क्वेल कुहक रही है, कुहू कुहू कर रही, अत्यंत निर्जन प्रदेश, उसमें उन्होंने ध्यान लगाया। धीमही सत्यम परम धीमही, मैं उनका ध्यान करता हूं। ध्यान करने से क्या होगा, हमारे धी में बुद्धि वृत्ति में प्रचोदयात, प्रच उदयात, मैं उनको अपना आत्मसमर्पण करता हूं, हमारी बुद्धि को पवित्र कर और हमारी बुद्धि में अपने को प्रकाशित करें, उदयात उदय हो, तभी उनको जाना जा सकता है। इसलिए हे प्रभो, मैंने अपने को आपके चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मनिवेदन कर दिया, इसलिए आपका शरणागत हूं। अब आप कैसे हैं, आपकी लीलाएं क्या हैं, ये कृपा करके हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। साथ ही साथ में भक्ति योगेन मनसा अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जद अपाश्याम। उन्होंने देखा भक्ति जो से उनका चित्त निर्मल हो गया और उसमें भगवान अपश्यत पुरुषो पूर्णम परम पूर्ण ब्रह्म को उन्होंने देखा, कौन से, जिसको वेदों में कहा गया, श्रुतियों में कहा गया है, पूर्णम इदम पूर्णम अदह पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव आदाय पूर्णम एव अपश्यत। ये पूर्ण ब्रह्म कौन, पूर्ण कैसे होगा, भगवान शक्तिमान के अतिरिक्त शक्तिमान है, उनका रूप है, उनका गुण है, बड़े दयालु हैं। वेदों में कहीं कहीं लिखा गया अपाणिता आदो जमना गृहीता, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, अव्यक्त है, अनादि है, निशक्ति है, कहीं लिखा गया। नारद जी ने उनको कहा था भगवान ऐसे नहीं है, यदि उनका आकार नहीं तो इस जगत में आकार कैसे होगा, समस्त आकारों के मूल रूट वो हैं, कॉज एंड एक्शन थ्योरी के अनुसार में यदि कारण में ही ये रूप नहीं है तो ये रूप उनसे कैसे होगा। इसलिए यदि ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि हुई, लाखों रूप करोड़ों रूप निकले हैं, उनमें जरूर रूप की सत्ता है, किंतु हम उनको देख नहीं पाते हैं इन आंखों से, इसलिए निराकार कहते हैं। हम तो एक हवा को भी नहीं देखते, उनको क्या देखेंगे। इसलिए अब आज उन्होंने देखा पूर्ण ब्रह्म को, क्या देखा, नारायण परतत्व हैं, राम परतत्व भी हैं, नृसिंह भगवत अवतार हैं, किंतु इनका कुछ वैशिष्ट निराला है। इनमें चार माधुरी विशेष रूप से इनमें परतत्व कृष्ण में है, और रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, चार विशेषताएं हैं जो और किसी में नहीं है। यदि कोई नारायण को सखा के रूप में भजन करना चाहे तो नहीं भजन कर सकता है, नारायण का कोई सखा नहीं। माता पिता के रूप में उनका भजन करना चाहे नहीं कर सकता, वो जगत के माता पिता, उनका जगत कौन माता पिता होगा। ये एक ही परतत्व के विभिन्न झांकियां हैं, अलग अलग तत्व नारायण और कृष्ण राम इत्यादि नहीं है, ब्रह्मा अलग से नहीं है, एक ही परतत्व अद्वितीय है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले ही बतलाया गया, बदंती तत्व बदंती तत्व विदस् तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, एक ही को बतलाया, एक ही परतत्व है। जैसे एक चांद पूर्णिमा को अपना पूर्ण प्रकाश देता है, द्वितीया को दो कलाएं, तृतीया को तीन कलाएं, अष्टमी को अष्ट कलाएं, ये चंद्र अलग अलग नहीं है। हम लोग पृथ्वी के जिस एंगल ऑफ विजन से हम देखते हैं उनको, कभी पूर्णिमा देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, ये रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। यथार्थ में चंद्र सब समय पूर्ण है, ऐसे भगवान की पूर्णता जब कृष्ण अपने शक्ति के साथ में हो और समस्त रसों के द्वारा उपासित हो, और जब विशेष करके मुरली साथ में हो, साथ साथ में अत्यंत अद्भुत रूप हो, अत्यंत उनकी लीला माधुरी हो, तब ये परब्रह्म कहलाते हैं। 16 कलाओं में इनको कहा जाता है, एक ही तत्व। रूप माधुरी कैसी, उन्होंने कैसी देखी, नारद जी के कहने से व्यास जी ने बैठे बैठे देखा, कैसी रूप, उनका अद्भुत रूप। इसके संबंध में बतलाते हैं भागवत में, वो वर्णन करेंगे कैसा रूप देखा, उसी को ये भागवत में जो कुछ उन्होंने देखा उसको उन्होंने व्यक्त किया, इसलिए शाश्वत संहिता कहलाती है। उन्होंने जो कुछ देखा जीवों के कल्याण के लिए, जो नहीं जानते हैं उन्होंने अभिव्यक्ति की। जैसा वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यते पुंसं शोक मोह भयापरा, जिनकी लीला कथाओं के श्रवण करने से, जिनका तत्व श्रवण करने से शोक मोह और भय जन संसार में जो हैं, और हम लोग तत्व ज्ञान के संबंध में जो अंधे हैं, ये सब कुछ दूर हो जाता है और कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति मिलती है, लगती है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए इसे मैं कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वंदना करने के बाद में लिखा, निगम कल्प तरोर्गलितम सुख मुखाद अमृत दर्शन युतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभा। हे रसिका, हे रसिक, हे भावुक लोग, आप लोग इसको श्रवण करें, और कब तक श्रवण करें, जब तक कि श्रवण करते 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 प्रेम में बढ़ करके शरीर की शुद्ध बुद्धि खो नहीं जाती और आनंद की मूर्छा में नहीं जाती। मुक्ति के बाद भी इसका श्रवण करना चाहिए, मुक्ति के पहले इसका श्रवण करने से अनुभव नहीं होता, इसलिए संसारिक आसक्ति रूपी मुक्ति को दूर करके, यही हमारा अंधापन है, आसक्ति दूर करके संसार से अपने कर्तव्य पर पथ पर आरूढ़ रह करके इसको श्रवण करो। ये कैसा है, निगम कल्प तरोर गलितंग फलम, निगम माने वेद श्रुति उपनिषद पुराण इत्यादि क्या है, ये कल्प तरु है, और इसका ये प्रपक का फल है जिसमें गुठली छिलके रेशे कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको फेंका जा सके, ऐसा श्रीमद् भागवत रस ग्रंथ है। तो कहा जैसे श्रुति और वेद तो कल्प तरु हैं, तो फिर फल की जरूरत क्या है, कहते हैं कि देखो कल्प तरु रहने से भी, पेड़ रहने से भी पेड़ की जड़ में रस होता है, उसको चूसने से इस स्वाद नहीं आएगा, उसके पत्तियों को आज चिबाने से वो रस नहीं आएगा, उसके डालियों और फूलों को भी चूसने से वो रस नहीं आएगा। उसमें से नीचे से रस जाकर के ऊपर में जाकर के फल में जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, तब आम मीठा और मधुर होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पल तरु का यह परिपक्व और मधुर बिना छिलका और गुठली का ये फल है, इसलिए इसको श्रवण करो। इसे सहज सरल में रूप में जिस प्रकार से परीक्षित महाराज जी की सुगति होकर के गोलोक वृंदावन में पहुंच करके और गोपी भाव में आए और उसका रसास्वादन किया, आप लोग भी इसका श्रवण करें। व्यास जी कह रहे हैं किस तरह का इसका रूप कैसा है उस परब्रह्म का, इस पर थोड़ा सा बतला रहे हैं कैसा सुंदर अद्भुत मधुर रूप उनका है। कृष्ण ने मधुर बंशी बजाई, जितनी गोपियां थीं उनके कानों में ये बंशी ध्वनि उपस्थित हुई। जगत में इसका कोई योग्याधिकारी नहीं था, इसलिए ब्रह्मांड को पार कर गई, वैकुंठ में पहुंची, वहां पर देखा जो कोई भी अधिकारी इस बंशी के श्रवण का नहीं है, इसलिए ऊपर उठ गई। अयोध्या में गई, कोई योग्य अधिकारी नहीं, इसके ऊपर में गई द्वारका में महिषियों के यहां, देखा जो ये भी अधिकारी नहीं, उसको पार करके मथुरा को भी पार करके ब्रज में गई, ब्रज में माताएं सो रही थी उनके कानों में नहीं गया, सखा लोग भी थे उनके कानों में भी ये रंध्र मधुर वीणा का स्वर नहीं, वेणु का स्वर नहीं गया, माताओं के भी कानों में नहीं गया, ये गया कहां उन गोप रमणियों के, उनके कानों में गया और उनको उन्मत्त कर दिया। वो जहां थी वहीं से उन्मत्त होकर के दौड़ी, कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में अंजल लगाया था, दस्तस्त वस्त्राभरण, एक आंख में क्यों लगाया वहीं से चल पड़ी। एक सखी उनको लगा रही है दूसरे आंख में, कहिए इसको भी लगा करके जाओ, नहीं एकदम चल पड़ी। अजगमो अन्यो अन्यम अलक्षितो दमा, एक दूसरे को ना देख पाए, अलग अलग दौड़ी, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, घर में नहीं रह सकी, कोई रोटी बना रही थी उसको तवे पर छोड़ दिया, जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी, परवेशन कर रही थी, दे रही थी भोजन परवेशन कर रही थी, बस वहीं से छोड़ दिया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वहीं से छोड़ दिया, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी, कोई गले का हार कमर में पहन लिया, कोई कमर का हार गले में पहन ली, जो जिस अवस्था में वहीं से भागी। वहां पहुंच करके जब कृष्ण के पास में पहुंची तो कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागा किं करवाणी, मैं आपके लिए क्या करूं, आपका स्वागत है, आप तो यहां पर पधारी। वो कुछ नहीं बोली, खड़ी रही। कृष्ण ने कहा, अब तो हमें देखा, हमारा दर्शन कर लिया, अब लौट जाओ घर में। चुपचाप खड़ी रही। इनके कहने का मतलब क्या? फिर कृष्ण ने कहा, घर में लौट जाइए, वन की शोभा देखने के लिए आई, देखा कितना सुंदर राकेश कर रंजितम, चंद्र अपने लाल लाल किरणों से पूर्व दिशा को, वो अपनी प्रेयसी को किस प्रकार से लाल अर्थात अबीर रंग से उनका मुखमंडल लेपन कर दिया, चारों तरफ वातावरण एकदम लाल हो रहा है, अनुराग का रंग है लाल, इसको आपने दर्शन किया, ठीक है अब तो घर में लौटना आपको उचित है। चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अर्थ रोजगार नहीं कर सकता, निर्धन हो गया हो, जैसा भी हो, तुम्हारे किसी मतलब का नहीं, तो भी स्त्रियों का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, इसलिए आप लोग घर में लौट जाएं, पतियों की सेवा करें, बच्चों को दूध पिलाएं, गायों का दोहन करें, गायें डकर रही होंगी, आपको चला जाना उचित है। फिर भी चुपचाप खड़ी रही स्तब्ध होकर के, फिर कहते हैं देखो स्त्रियों के लिए सबसे बढ़कर के अधर्म पति की सेवा छोड़ना है, इसलिए चला जाना चाहिए, पति की सेवा करो, रात बड़ी भयंकर है, यह निशा कैसी भयानक है, कह रहे हैं घोर यह रात्र और घोर सत्व निमेषिता, घोर जानवर, बड़े भयानक जानवर इसमें है, बड़ा घोर अंधकार हो रहा है स्त्रियों के लिए इस वन में अकेले, जहां पर मैं अकेला और तुम अकेली, और कैसी परम किशोरियां, परम सुंदरी तुम लोग, जमुना का किनारा, अत्यंत सुंदर सुहावना, कम उद्दीपन के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है सब उसी निशा में सब प्रकट है, इसलिए यहां पर तुम्हारा एक मिनट का ठहरना भी उचित नहीं, इसे स्वर्ग से आदमी गिर जाता है और अस्वर्गम और जशस कर्म, इसे बड़ी दुर्नाम होता है, यदि कोई यहां पर आए तो हमें और तुम्हें देखकर के क्या सोचेगा, इसलिए जल्दी से लौट जाओ। स्त्रियां जो गोप रमणियां थी और तो बहुत सी बातें कहीं, उसमें थोड़ी सी कह करके मैं आगे बढ़ूंगा, ये कैसा कृष्ण का रूप है इस पर विषय पर हमको चलना है। तो वो कह रही हैं देखो आप तो उपदेश देने वालों में इतना सुंदर हमें उपदेश दिया, आज तक हमको ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, इसलिए आप हमारे गुरु हैं। तो शास्त्रों का ऐसा उद्देश्य है कि सबसे पहले गुरु की पूजा करके तब भगवान की पूजा हो, तो आप तो मेरे गुरु हैं ना, इतना सुंदर उपदेश दिया हमको, इतना दीक्षा दी, इससे पहले आपकी हम सेवा कर लें, और यदि नहीं आप स्वीकार करते तो आप अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, ये समझिए। क्यों क्यों भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए भ्रष्ट होंगे, आपने गीता में ये तो लिखा है ना, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा यो भजाम्य हम, जो जैसा हमारा भजन करता है मैं उसके अनुरूप उसको फल देता हूं, मैं उसी रूप में उस व्यक्ति को अंगीकार करता हूं। तो हम आपके पास में जिस रूप में आई हैं उस रूप में यदि अंगीकार नहीं करते, हमारी सेवा नहीं लेते, तो आप गुरु पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए धर्म का भय आपको होना चाहिए, हमें नहीं, हमें तो इसी की चिंता लग रही है, अपने धर्म से आप भ्रष्ट हो रहे हैं, हमको बुलाया आपने, हम आई और हमें छोड़कर के आप हमें लौटने के लिए आदेश रहे। अरे भाई घोर निशा कहां है, ये तो अष्टमी का चांद है, पूर्णिमा चांद, इसमें तो रात अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इस वृंदावन में जमुना के किनारे हिरण विचरण करते हैं, कोयल कुहकती है, मोर नृत्य करते हैं, बेली चमेली समस्त ऋतुओं के फूल एक साथ में खिलते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं, सारा वातावरण राधा और कृष्णमय हो जाता है, वहां राधे राधे, वहां के चौकीदार भी आज भी कहते हैं मथुरा में और वृंदावन में राधे राधे, सबको आवाज दे करके उठाते हैं, जो वृंदावन में मथुरा में रहे होंगे वो लोग समझेंगे। तो कहां घोर रात है, अंधकार कहां, और जंगली जानवर या हाथी बनेले बाघ और सिंह तो यहां है नहीं, और पति जगत का कौन है, पतियों के पतियों के पति के मूल पति कौन है जगत के, कृष्ण ही जगत के पति हैं, इसलिए आप ही कहते हैं कि पतियों की सेवा करें, यह तो हार मांस और रक्त का यह थैला एक है, यह पति नहीं, और यदि कहो आत्मा तो समस्त आत्मा तो समझ जाती हैं एक दूसरे की स्त्री और पति, पुत्र भाई बंधु, ये सब संबंध वहां नहीं है, एक बात तो कृष्ण ही जगत में पुरुष हैं, बाकी सब उनकी शक्ति के द्वारा परिणत और उनसे प्रकाशित है, इसलिए आप ही जगत के पति हैं, आपको छोड़ करके हम कहां जाएं। उसी में एक श्लोक का स्त्रियंग ते कल्पदायत बेनु गीत सम्मोहिता आर्चरिता न चले त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम इदं च निरुक्ष रूपम जद गो द्रुम द्विज मिगा पुलकान विभ्रम। कृष्ण के रूप का बड़े मार्मिक सुंदर रूप में यह वर्णन कर रही हैं। पहले पूर्वराज में उन्होंने वर्णन किया था, व्यास जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कृष्ण का सबसे सुंदर रूप गोपियां देख रही हैं। वो रूप क्या है? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपि संभय जयंती चमालम रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप बृंदई बृंदारण्यम शपदरमणम पाबिशत गीत कृति। भागवत में यदि कृष्ण का जहां भी रूप है बहुत से रूप का वर्णन किया गया, किंतु सबसे मार्वलस और सबसे श्रेष्ठ रूप गोपियों का जो ये देखा, तो उसके लिए कह रही हैं कैसा ये रूप का है। साधारण रूप में इसका शाब्दिक अर्थ यह है, श्याम कृष्ण का अंग है, मानो मेघ है, इस पर स्थिर विद्युत लहरा रही है, बिजली जैसे चमकती है वैसा पीतंबर, और गले में पैरों तक लगने वाली 5 या 7 फूलों की बड़ी सुगंधित माला है जिसको वैजयंती कहते हैं। एक कान पर एक कनेर का फूल है पीला सा, जो बड़ा फबता है इस श्याम शरीर पर, जिसको देख करके मोर नित्य करने लगता है, अपने आप समझता है ये मेघ है बरसनेंगे अब, और उसको कृष्ण कभी एक कान से लेकर कभी इस पर रखते हैं, कभी जैसे छोटा सा किशोर बालक अल्हड़ अवस्था में, अल्हड़ आप लोग जानते होंगे, बड़ा अल्हड़ आजकल अल्हड़पन होता है, बैठा मोटा मन लगाइए, केश कहां इधर उधर लुढ़क रहे हैं, ये अल्हड़ता कहते हैं, ये अल्हड़ता नहीं, ये कुछ और चीज है, वो प्रेम में दीवाना होने वाले का वो अल्हड़पन, और कृष्ण स्वयं वो प्रेम स्वरूप प्रेम की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है। ऐसा अद्भुत रूप जिसको हिरण देख ले तो हिरणी आगे बढ़कर के आंखों से प्रणय की भीख मांगते हुए आगे बढ़क जाती है। आकाश के मेघ एकदम उनके ऊपर में छत्र छाया कर करके शीतल शीतल बूंदे बरसाने लगते हैं बड़े प्रेम की। नदी में उमंग ऐसी आती है यमुना में, वो क्या करती हैं, वो आगे बढ़कर के कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं अपने हाथों से, मानो पानी बढ़ गया आलिंगन किया, और फिर अपने हाथों में जब कृष्ण ने उनके तरफ में नहीं ध्यान दिया तो वो नीचे लज्जित होकर के नीचे उतर आई, और अपने हाथों से माने अपनी लहरों से कमल के फूलों को लेकर के कृष्ण के चरणों में उपहार दे दी। गोपियां कहते हैं कि यदि मर करके हम हिरणी बन जाए तो हमारा जीवन सौभाग्य बन जाए, कोई रोक टोक नहीं करेगा, हमारे पति नहीं रोक सकेंगे, हमारी सास नहीं, हमारी ननद नहीं रोक सके, ये प्रेम है गोपियों का। वो कहती हैं ओह ये हिरणी धन्य है, उसका पति वो काला धब्बा वाला कृष्णसार हिरण आगे लेकर के और उनको लेकर के चलता है। अच्छा तुम कृष्ण से प्रेम कर रही है, चलो चलो आगे, कोई डरने की बात नहीं, मैं पीछे हूं ना, और हमारे पति यदि सुन लें जैसे ये कृष्ण से प्यार करती है तो घर में घुसने ना दें, कबाट बंद करके रख देंगे हमें, हमारी ननद और सास कितनी हमारी बुराई करती है, इसलिए मर करके अब हिरण होंगी, तब कभी ऐसा स्वच्छंद कृष्ण से प्यार करने को मिलेगा। तो का स्त्रियंग ते कल्पदायत वेणु गीत, कृष्ण से वो गोपियां कह रही हैं आप हमें धर्म का भय दिखला रहे हैं, धर्म उल्लंघन का तुम्हें बहुत अकृति होगी, इसलिए घर में लौटो। कहते हैं का स्त्रियम, स्त्रियों की तो बात क्या, हम लोगों का कोमल और मधुर स्वभाव है, जहां हम सुंदर रूप देखा, जहां सुंदर स्वर सुना किसी का, वहीं पर हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, तो आपकी यदि हम धर्म से उल्टा कुछ कर रही हैं, यदि आप ऐसा देखते हैं तो इसका कारण आप में है, आप इसके कारण हैं हमारे धर्म से भ्रष्ट होने का, क्यों आपको देख करके। और कल्पदायत बेनु गीत, अत्यंत असमोर्ध रूप जिनका है, नारायण का भी इतना रूप नहीं है जितना कृष्ण का है, राम का भी बहुत सुंदर रूप है, कितना सुंदर रूप इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु ये लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर वृंदावन के बेलदल में आज भी तपस्या कर रही हैं कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए, किंतु आज तक भी उनको ये नहीं मिला, ये आनंद नहीं मिला। इस तरह से सीता जी परम सुंदरी हैं, राम की उपासना करती हैं, किंतु कृष्ण को देखने से वो भी मोहित हो जाएंगी। रुक्मिणी और सप्तभामा की तो आप तो बात ही जानते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, कितने सुंदर सरस ये है। इसलिए यदि हम लोग अपने धर्म को छोड़ करके हम लोग अपने धर्म का व्यतिरिक्त कर रहे हैं तो ये दोष आपका है, आपके इस रूप का और आपके इस वेणु स्वर का, ये है हमारा दोष नहीं। क्यों? आपका इतना जो सुंदर रूप है और उसमें जो मधुर रूप है, इसके वजह से ही हम अपने धर्म को छोड़ दिया। हम लोगों की तो बात क्या है, गो दुम द्विज मृगा पुलकान्न विभ्रम, जड़ जंगम बन जाता है और जंगम जड़ बन जाता है, चेतन अचेतन बन जाता है आपके रूप और आपकी बंसी को ध्वनि दे करके, और अचेतन चेतन बन जाता है। कैसे? पत्थर पिघल जाते हैं आपकी बंसी की ध्वनि से। अभी भी वृंदावन में आप जाइए, काम्य वन के अंतर्गत में या और जगहों में, नंदगांव में कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले वेणु बजाई और पत्थर एकदम पिघल गया, उसमें गायों के पैरों का चिन्ह, कृष्ण के चरणों का चिन्ह, बलदेव जी के चरणों का चिन्ह, हिरणों के चिन्ह, ये सब अभी आपको मिलेंगे। जीव ताजा हुआ प्रमाण, किसी ने बनाया नहीं, नहीं तो भागवत में लिखा गया, इसके बाद में वल्लभाचार्य ने लिखा, इसके बाद में मध्वाचार्य ने लिखा, ये गलत नहीं लिख सकते थे। उपनिषदों में वेदों में चारों तरफ में इसके प्रमाण है, इसलिए किसी ने पीछे से अंकित नहीं किया उनके चिन्हों को। अभी भी आप जाएंगे जगह जगह में इनके चरणों के चिन्ह मिलेंगे, जहां पर बंसी बजाई और पत्थर पिघल गया। इसलिए कहते हैं कि वो जड़ चेतन बन गया और चेतन मृगा जो चलने वाले लोगों से डरते हैं वो चुपचाप खड़े होकर के स्तब्ध हो गए। जमुना जी चलने वाली, हुआ क्या, कृष्ण ने बंसी बजाई बनु ध्वनि की और नीचे जो धारा जा रही है उल्टे उलट करके चली सुनने के लिए, और ऊपर वाली जा रही, दोनों में टक्कर होने से अब नीचे जा नहीं रही, अब होगा तो वहां पर भ्रमर पड़ गया। इस तरह से जड़ चेतन और अचेतन हो जाते हैं। पशु भी जो चलने वाले हैं, पक्षी एकदम चुपचाप ध्यानस्थ होकर के वहां पर सुनने लगते हैं, कृष्ण का ऐसा सुंदर है। इसी रूप का वर्णन करते हुए गोपियां पूर्वराग में बतला रही हैं, एक वेणु गीत का मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा और तब तक शायद समय भी पूरा हो जाए और कल हम इसके आगे की कुछ बात बतलाएंगे। कह रहे हैं गोपियां कृष्ण शरद ऋतु में जमुना के किनारे उपवन में बंसी बजाई रास के पहले, वहां पर गोपियां सुन करके उसका वर्णन कर रही है कृष्ण के परोक्ष में। कृष्ण तो जा रहे हैं गोचारण के लिए और ये घरों में बैठी हुई परस्पर समझाती हैं, जो गोपियां हैं परस्पर उसका वर्णन कर रही हैं। तो कह रही हैं अखमतांग फलम इदम न परम विदाम सख्यु अनुविदेश यतोर वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेनु जुष्टं जैवा निपीतम अनुराक्त कटाक्षमोक्षम। कह रहे हैं अखनतां फलम इदम न परम विदाम, गोपियां कह रही हैं भाव नेत्र से देख रही हैं, घर में बैठी हैं किंतु देख रही हैं कृष्ण गोचारण के लिए एक वन से अन्य वन में चले जा रहे हैं। यदि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से संजय अपने राजभवन में हस्तिनापुर में बैठा हुआ और सारी बातें जैसा का तैसा शब्द भी और का क्या क्या हो रहा, कौन कौन लड़ रहे हैं, कौन कौन मर रहे हैं, ये वहां राजधानी में हस्तिनापुर में बैठे हुए उनको सभी कुछ बतला रहे हैं, ये किस चीज के प्रभाव से व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि, यह दिव्य दृष्टि क्या, भक्ति का पहला चरण आभास है, इसको उन्होंने दी और उसके द्वारा बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं जो वहां पर क्या, अर्जुन क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, भीष्म पितामह जी कर्ण क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, गीता का जो उपदेश था ना, सारा गीता का उपदेश एज इट इज जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया उनको सुना रहे हैं। तो गोपियां भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की मूर्तिमान वो विग्रह है वो नहीं जान सकती, इसलिए भाव नेत्रों से देख रही हैं। कृष्ण गायों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में चले जाए, लाखों उनके सेवक उनके ग्वाल बाल सखा हैं, दाम श्रीदाम सुदाम वसुदाम पिस्तो कृष्ण लवंग अर्जुन सुबल मधुमंगल इत्यादि लाखों गायें कितनी हैं, केवल नंद बाबा की 9 लाख गायें और विश्वभान महाराज की 11 लाख गायें और ऐसे ही सब लोग गायें। अरे भाई वृंदावन में तो छोटा सा वन, यहां पर करोड़ों करोड़ों गाय कहां से रहेंगी। भाई कृष्ण जैसे चिन्मय हैं, अपने मुख के अंदर में विश्व ब्रह्मांड अर्जुन को जैसे दिखला दिया, अपने छोटे से मुख में अभी जो भी 1 वर्ष के थे अपनी मैया को विश्व ब्रह्मांड सब उनको अपने मुख में दिखाया, वैसे उनका धाम भी चिन्मय होता है, वो कृष्ण ही धाम बने हुए बलदेव जी, इसलिए वो कभी कभी इच्छा करने पर संकोच और कभी कभी उनका विस्तार है। लाखों करोड़ों ब्रह्मांड सब ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में है, ये तो वृंदावन इतना विशाल, इसलिए ये शंका नहीं उठेगी, ये तो कृष्ण की भगवत्ता कहां रही, वो स्वयं भगवान है। कर्तुम आकर्तुम अन्यथा सर्व कुछ कर्तुम समर्थम, वो सब कुछ करने में अघटन घटन पटीय शीशा